परम औदारिक शरीर हो जाता है, और फिर आयु अंतर मुहूर्त शेष थी, तो उस अंतर मुहूर्त में उन्होंने अघातिया कर्मों का भी नाश करके अंतकृत केवली के पद को प्राप्त कर लिया। कितना महान पुरुषार्थ था उनका, कैसे उन्होंने उस भयंकर वेदना को सहन किया होगा, कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां तो कोई किसी की बात सहन नहीं कर पाता। वहां तो उन्होंने इतने बाण सहन किए, पूरा शरीर छलनी हो गया, कितना रक्त प्रवाहित होगा, लेकिन फिर भी समता से विचलित नहीं हुए। बस यही समता साधुत्व का सार है। समत्व को योग कहा है, समता को योग कहा है शास्त्रों में। योगी के पास ही वो क्षमता होती है। समता की क्षमता भोगियों में असंभव है। भले आप शब्दों में कहो भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, समता क्या वस्तु है विचार करो, कोई हंसी खेल है? समता कोई छोटी मोटी वस्तु है? समता तो योग का पर्यायवाची शब्द है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक आता है, देखो पर्यायवाची शब्द, मजेदार है श्लोक, साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते एकार्थवाचकः। ये सारे शब्द एकार्थवाची है, माने इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। कौन से शब्द हैं? साम्य यानी समता, स्वास्थ्य, अब ये जो बोलचाल वाला स्वास्थ्य अस्पताल में जो प्राप्त कर लेते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य है, यहां पर जिस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो है समता। समाधि, समाधि शब्द का आज अर्थ विपरीत हो गया, अन्य मतों का अर्थ जैनियों ने पकड़ लिया। वास्तव में समाधि का अर्थ वो मरण नहीं है, समाधि तो साधु जीवन में कई बार प्राप्त करते हैं। साधु की मृत्यु का नाम समाधि नहीं है। समाधि क्या वस्तु है? एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम। एकाग्र मन होकर अभेद रत्नत्रय में जहां भी साधु विराजमान हो जाए बस समाधिम लभते, समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो समाधि का मतलब मरण नहीं है, वो तो शब्द का कुछ है। समाधि दिवस हो गया, चलो शांति सागर महाराज का समाधि दिवस, अरे वो समाधि दिवस ऐसा प्रचलन हो गया। ज्ञान सागर महाराज का जेठ अमावस को समाधि दिवस, समाधि दिवस नहीं हो, समाधि तो जितनी बार साधु प्राप्त कर ले वही उनका समाधि दिवस। समाधि मरण अलग वस्तु है, तो उसको महाप्रयाण दिवस कह सकते हैं आप, क्योंकि हर चीज का समाधान चाहिए मनुष्य को। ये पता चल जाएगी यहां पर त्रुटि हो रही है तो फिर त्रुटि सुधारने का मार्ग भी तो जरूरी है ना। त्रुटि हो रही है मालूम पड़ गया, लेकिन अब करें क्या, फिर उसकी जानकारी भी होना चाहिए ना। तो फिर जैसे समाधि दिवस, ये शब्द आपको पता चला कि समाधि दिवस नहीं कहना चाहिए, तो वो कौन सा दिवस कहोगे? महाप्रयाण दिवस। महाप्रयाण, प्रयाण तो सबको करना है, जाना सबको है, प्रयाण यानी रवानगी, प्रयाण यानी रवानगी, रवानगी तो सबकी होगी, लेकिन महाप्रयाण किसको कहेंगे? समाधि पूर्वक प्रयाण करना, यानी समता भाव पूर्वक शरीर को छोड़ना ही समाधि मरण है। समाधि मरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और मरण का अर्थ भी समाधि नहीं है, किंतु समता पूर्वक मृत्यु का वरण करने का नाम समाधि मरण है। इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो जब समाधि को साधु प्राप्त होते हैं तब वो दशा उनकी निर्विकल्प होती है, साम्य भाव रूप, समता रूप होती है। और समता का स्वरूप प्रवचन सार की 241वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो, पसंस निंद समो, सम लोट्ठु कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो। प्राकृत भाषा का व्याकरण हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन सिर्फ गुरु भक्ति से हमने प्राकृत भाषा सीखी है। गुरु के मुख से सुनते 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 इतना सुंदर बोलते हैं आचार्य महाराज जब प्राकृत भाषा का उच्चारण करते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, तो सुनते सुनते हमें आगे, जैसे माँ के मुंह से सुनते सुनते बच्चा गुजराती, कन्नड़, मराठी सारी भाषाएं सीख लेता है, उसी प्रकार हमने भी गुरु जी से सुनते सुनते प्राकृत भाषा सीखी है। ये गाथा आचार्य श्री की प्रिय गाथा है, प्रवचन सार की 241वीं गाथा हमारे गुरु जी की प्रिय गाथा है। सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु और बंधु वर्ग के प्रति जो सम है, इनकी तरफ से कोई बंधु या शत्रु नहीं है। सामने वाले अपने आप को बंधु या शत्रु मान ले छूट है। क्योंकि क्या होता है कि साधु के जो शरीर संबंधी रिश्तेदार होते हैं उनका कुछ ना कुछ ममत्व तो रहता है साधु के प्रति। साधु भले ममता छोड़कर समता में चले जाए, लेकिन जो रागी है वो उतना अपनत्व तो रखता है। अब 10 साधु हैं, अरे ये अपने महाराज, ऐसा कुछ भाव आ जाता है। अब वो धर्म स्नेह वश भी आ सकता है और फिर पारिवारिक रिश्ते के कारण भी वैसा हो सकता है। सम सत्तु बंधु वग्गु, जो शत्रु और बंधु वर्ग के प्रति समान है। सम सुख दुखो, सुख और दुख में भी जो समान है, पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी विनसे थिर नाही। ये पंक्ति वहां लगाने की है विपत्ति और संपत्ति में। हर पुण्य और हर पाप के फल में समता की बात दौलत राम जी को अभिप्रेत नहीं है, यानी उस पंक्ति का अभिप्राय ये नहीं है कि आप पुण्य फल में बिल्कुल शांत बने रहो और पाप के फल में भी बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ पुण्य के फल और कुछ पाप के फल ऐसे होते हैं जहां पर अपनी भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। हर जगह चुपचाप बैठना उचित नहीं है। जैसे मान लो गुरु महाराज आपकी नगरी में पदार्पण कर रहे हैं, पुण्य का फल है कि पाप का, तो उसमें हरख विलखो मत भाई ऐसा करोगे क्या? उसमें हर्षित नहीं होना, पुण्य के फल में हर्षित नहीं होना, ये जो कथन किया है ये किसी अपेक्षा से किया है या एकदम कानून बना दिया? अपेक्षित कथन है। इसलिए जिनवाणी के स्वाध्याय में अपने अंदर अगर इतना विवेक हो कि कौन सा सूत्र उपदेश सूत्र है और कौन सा सूत्र सिद्धांत सूत्र है, तो कभी भी अपन भटक नहीं सकते। ये कथन सिद्धांत सूत्र नहीं है। ये तो जब अपने को कभी कोई संकट आता है तब उसमें समता रखने की बात कह रहे हैं। अगर आयतनों पर संकट आ जाए, अरे भाई हमने तो सुना है कि पाप के फल में समता रखना चाहिए, तो अब गिरनार जी पर जो कुछ हो रहा है वो हम श्रावकों के पाप के उदय से हो रहा है, समता रखना पड़ेगी, ऐसा है क्या? अब आप समझ गए ना इशारा, समझदार को इशारा काफी है। तो साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च, समाधि शब्द भी समता का पर्यायवाची, योग भी समता का पर्यायवाची शब्द है, और चेतो निरोधनम, ध्यान। चेतो निरोध का अर्थ क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ अंतर मुहूर्तात्। ध्यान भी उसका पर्यायवाची शब्द है। और शुद्धोपयोग इत्येते, शुद्धोपयोग भी उसी का पर्यायवाची शब्द है। ये सारे भवन्ते एकार्थवाचका, पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये श्लोक है कि ये सारे एकार्थवाची शब्द है। तो समत्व योग बहुत ऊंची चीज है, मामूली वस्तु नहीं है। सुख और दुख में समता रख पाना कोई हंसी खेल नहीं है। उपवास में क्या हालत होती है? उपवास तो छोड़ दो, आप एकाशन में क्या हाल होता है बताओ? आप अगले दिन सुबह का पूछ रहे हैं, हाल शाम का नहीं पूछ रहा, आज की सवेरे क्या स्थिति रहती है? ईमानदारी से बोलो तो फिर ठीक है, बोलो ही मत। तो सुख दुख में समता बहुत बड़ी चीज है। प्रशंसा निंद सम, उससे भी बड़ी बात क्या है? प्रशंसा और निंदा में समान भाव। ठीक है, यह पुद्गल पर्याय नश्वर है, स्थिर नहीं है। किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं बन जाता, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं बन जाता। दूसरों के अभिमत पर वस्तु का परिणमन नहीं टिका। वस्तु की जो पर्याय है वो वस्तु की पर्याय है। किसी के कहने से, किसी की आलोचना से या किसी की प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके पास उतने गुण वास्तव में हो, और जरूरी नहीं है कि जिसकी निंदा हो रही है उसके अंदर वो ऐसे अवगुण हो। प्रशंसा और निंदा सामने वाला अपनी कषाय के कारण भी कर सकता है। आ रहा है समझ में? अपनी कषाय से भी आप किसी की भी प्रशंसा या निंदा कर लो। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति की भी निंदा हो सकती है, किसी निंदनीय व्यक्ति की भी प्रशंसा हो सकती है। तो साधु विचार करते हैं, पहली चीज तो ये है कि वो जो मेरी निंदा कर रहा है वो अगर सच कह रहा है तब तो मुझे अपना सुधार करना चाहिए, उस पर नाराज होने की क्या बात है? वो तो मेरा हितैषी हो गया, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने वाले 50 मिल सकते हैं, सच्ची निंदा करने वाला एक आध मिलता है। तो सच्ची निंदा करने वाला झूठी प्रशंसा करने वालों से तो अच्छा है, इसलिए मैं बुरा क्यों मानूं? बुरा मानने की बात नहीं। और अगर झूठी निंदा करता है तो फिर झूठ बोलने का पाप उसको लगेगा, मैं क्यों आकुलित हूं, मुझे कषाय करने की क्या आवश्यकता है? साधु समता धारण करते, प्रशंसा और निंदा में समता। अब जब अपना नाम कहीं से सुनाई देता है, मंदिर में मान लो आप प्रवेश कर रहे हैं और कहीं कुछ लोग खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपका नाम ले लिया उनने, तो फिर आप देव दर्शन छोड़कर 2 मिनट के लिए वहां थम जाते हैं। क्या चर्चा चल रही है आखिर? एकदम वहां रुक जाते हैं, आपके कदम कान खड़े हो जाते हैं, क्या चर्चा चल रही है? चलो खैर, अच्छी चर्चा है, कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। मतलब दर्शन से भी ज्यादा महत्व उस वार्ता का हो गया। कितनी मान कषाय अपने अंदर, देखो अपन परीक्षा करो तो पता चलता है कि अपन कितने कषायी जीव। वैसे शांत बैठे तो किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या क्या भरा है बारूद, लेकिन अवसर पर परीक्षा होती है, पता चलता है कि अपन कोई दूध के धुले नहीं है, अभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। पसंस निंद सम लोट्ठु कंचनो पुल, मिट्टी के ढेले में और सोने का आभूषण पड़ा हो, साधु की दृष्टि में दोनों पुद्गल की पर्याय है, एक बराबर। क्या फर्क पड़ता है? सोने का आभूषण पड़ा है, मुझे इससे क्या लेना देना? ये मिट्टी का ढेला पड़ा है, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता। और आखिरी में कह दिया, जीवन और मरण में भी समता रहती है, कितनी बड़ी बात है। हारे प्रहारे भी समान बुद्धि। सुदर्शन उदय में ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि कोई हार अर्पित कर रहा हो और कोई प्रहार कर रहा हो तलवार का, तो भी समान बुद्धि, समता है, कुछ नहीं। उत्तम क्षमा के विषय में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने जो श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है ज्ञानाणों में, आकृष्टो हम हतो नैव हतो वा न द्विधा कृतः, मारितो न हतो धर्म मदीयो नेन बंधुना। अलौकिक है वास्तव में साधु का जीवन, अलौकिक है, इससे दूसरा कोई शब्द ही नहीं हो सकता। कोई गालियां दे साधु को तो साधु विचार करते हैं कि गालियां तो दी है, मारा पीटा तो नहीं, लोग तो मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं किसी को, ये तो सिर्फ गाली दे रहा है, मेरे पुण्य का उदय है, कुछ इसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए आगे, बस आगे बढ़ जाते हैं। हतोवा अथवा कोई मार दे तो, पत्थर मार दे या फिर और किसी प्रकार से उपसर्ग कर दे तो, तू साधु विचार करते हैं न द्विधा करता है। कई बार तो लोग तलवार से टुकड़े कर डालते हैं, इसने मेरे टुकड़े तो नहीं किए, सिर्फ पीटा है ना, मुझे नाराज होने की क्या बात है, क्षमा धारण करते हैं। मारी तो अगर जान से मार भी डाले तो भी साधु कहते हैं कि मेरे रत्नत्रय को तो नहीं मारा, मेरे रत्नत्रय को तो नष्ट नहीं किया इस मित्र ने। देखो क्या विचार है, इस मित्र ने, मित्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मित्र अपने काम में सहयोगी होता है। अपना काम क्या है, कर्म नोकर्म से छुटकारा प्राप्त करना। अब नोकर्म का तो अपनी तरफ से बुद्धिपूर्वक घात साधु नहीं करते, लेकिन अगर कोई इस शरीर का ही वियोग कर दे तो साधु सोचते हैं कि चलो जिस पिंजरे से मुझे छूटना ही था अंत में, वो इसने पहले ही मुझे मुक्ति दिला दी, तो फिर इस मित्र के प्रति नाराज क्या होना, क्षमा धारण करते हैं। तो इस प्रकार समत्व का नाम ही योग है, बहुत बड़ी चीज है। समता की बात करना अलग बात है और समता से बात करना अलग बात है, पर इसका जब रस आने लगता है, प्रारंभ में बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे अपन अभ्यास करते हैं तो फिर इसमें एक रस आता है। और कहते हैं कि जिस गृहस्थ ने सामायिक में रस लेना प्रारंभ कर दिया वो साधु बनकर बहुत आगे बढ़ जाएगा। बाकी क्रियाओं में रस आना ना आना अलग बात है, लेकिन सामायिक में अगर रुचि बढ़ जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाए। सामायिक में क्या है, समता का अभ्यास है। मुनि के लिए 3 बार सामायिक का नियम नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज मध्य रात्रि को भी सामायिक करते थे, उनके एक परम भक्त ने हमसे बतलाया था, जो उनके निकट रहा हुआ है, रायदेश समाज उमड़ जाति में एक पूना के सज्जन है कांतिलाल जी शाह, यहां पर आप लोग शाह बोलते हैं, वहां पर मराठी में शाह बन गया है। तो वो शांति सागर महाराज श्री के साथ बहुत करीब रहे हुए हैं, बहुत सेवाएं की उनने शांति सागर महाराज की, और उनके संस्मरण सुनो तो आप रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे संस्मरण उनके पास है। उन्होंने बताया था कि आचार्य शांति सागर महाराज आहार में हल्दी नहीं लेते थे और आधी रात को सामायिक नियम से करते थे। तो सामायिक का साधु के लिए 3 बार बैठने का नियम नहीं है, उनका जीवन ही समता स्वरूप है। सामायिक तो उनके 6 आवश्यकों में आवश्यक है, उसका कोई काल नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में सामायिक चारित्र का उल्लेख करते हुए बोला कि 2 प्रकार का हो सकता है, नियत कालम अनियत कालम चेति। अनियत काल माने जो समता जीवन भर धारण करते हैं साधु, वो अनियत काल सामायिक होगी, और स्वाध्याय आदि के समय जो विशेष समता भाव आता है जिनवाणी के सूत्रों को सुन करके, वो नियत काल सामायिक हो गई। और 3 बार सामायिक का तो सामायिक प्रतिमा में नियम होता है, 2 बार सामायिक का सामायिक व्रत में, शिक्षा व्रत में, दूसरी प्रतिमा में नियम होता है, और सामायिक के अभ्यास का तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं अभ्यास की, मतलब मैं इतनी देर बैठता हूं, अब कोई राग द्वेष नहीं करना मुझे, मेरी प्रशंसा करने वाले के प्रति, निंदा करने वाले के प्रति, भला बुरा जो भी करने वाला है, सबके प्रति मुझे समता रखना है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अगर जीव का विचार करें तो प्रदेश की अपेक्षा तो सब जीव समान है, सब जीवों के कितने प्रदेश हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र आता है, असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, हर एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो कौन बड़ा कौन छोटा बताओ? सब समान हो गए क्षेत्र की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से। अगर अपन सब जीव द्रव्य हैं तो फिर द्रव्य दृष्टि से सब समान हो गए, एक ही जाति हो गई ना अपनी, कौन विजाति हुआ बताओ? द्रव्य दृष्टि से सबकी जाति कौन सी है? जीव। और ये जो माइक्रोफोन है, ये कपड़े हैं, ये शरीर है, इसकी कौन सी जाति है? अजीव, पुद्गल द्रव्य है। तो अपन सब समान हो गए सारे जीव, तो सर्वभूतेषु समता। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक और आता है समता के बारे में, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम व्रतम मतम ने व्रतम। यही सामायिक व्रत है, सब जीवों के प्रति समता रखो, संयम के प्रति प्रशस्त भाव रखो, उमंग आदर का भाव रखना चाहिए संयम के प्रति, और आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ देना, यही सामायिक व्रत है। तो वो समता एक योग है, और ममता ममता समता नहीं है, इसलिए विषमता है। विषमता, विषमता यानी राग द्वेष। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो योगी जैसे सुकुमाल स्वामी, उन्होंने उस उपसर्ग को भोगा नहीं, उपसर्ग हुआ जरूर, बहुत बड़ी बात है। समयसार ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर चित्रण किया आचार्य कुंदकुन स्वामी ने। कर्म का उदय आ जाता है, उसका फल भी सामने आ जाता है, लेकिन उस फल का उपभोग नहीं करते। कौन नहीं करते? हर व्यक्ति में नहीं होती उतनी क्षमता कि फल मिल जाए और उपभोग ना करे। सुख और दुख के फल सामने आ जाए तो फिर अपने अंदर भी सुख और दुख के भाव हो जाया करते हैं, लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनि है, जो समत्व योग के धारी हैं, वो उसका उपभोग नहीं करते। सुकुमाल स्वामी ने कितनी सामर्थ होगी, 3 दिन पहले तो राई का दाना चुभ रहा था, और आज शालिनी ने उनके पैरों की पिंडलियां खा ली, जांगे खा ली, और पेट को भी फाड़ कर अतड़िया बाहर खींच ली है, तो भी चेहरे पर शिकन नहीं है, अंदर कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल शांत समता भाव में स्थिर है। क्या अद्भुत पराक्रम है योगी का, स्मरण करने से भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कितनी समता का उन्होंने अभ्यास किया, और क्या अभ्यास, 3 दिन में इतना बड़ा काम कर लिया कि उनका स्मरण आज 70-70 साल साधना करने वाले योगियों को भी अंत में कराया जाता है संलेखना के समय कि हे योगी, देखो तुमने इतनी तपस्या की, इतने उपवास किए, इतनी साधना की, आज कष्ट हो रहा है, क्लेश मत करो, सुकुमाल स्वामी का स्मरण करो। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी, एक शालिनी जुग बचा जुत, पाव भख्यो दुख कारी, यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। एकदम शांति मिलती है, मरते समय कोई बचा नहीं सकता, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया जाता है। तो यहां पर अशरण अनुप्रेक्षा की पहली गाथा का अपने को ख्याल करना है कि उस संसार में शरण कौन हो सकता है जहां इंद्र का भी मरण हो जाता है, जहां हरि हर और ब्रह्मा भी काल कवलित हो चुके हैं। ओम शांति। अशरण अनुप्रेक्षा, स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि। 24वीं गाथा में दृष्टांत पूर्वक अशरण भाव का चित्रण कर रहे हैं। सीहस कमे पडिदम सारंगं जहन रख दे कोवी तहमिच्चुणाय गहिदं जीवं पिण रख दे कोवी। सिंहस कमे पडिदं, सिंह एक बड़ा प्रसिद्ध प्राणी है जिसको वनराज कहते हैं। भक्तावर स्तोत्र के 39वें काव्य की व्याख्या में आपने सिंह का बहुत वर्णन सुना था। गुजरात में गिरनार का जंगल है, वहाँ पर लगभग 250-300 सिंह हैं और उन सिंहों में 5 प्रजातियां हैं और फिर विभिन्न स्थानों में विश्व में अलग अलग प्रकार के सिंह हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में काले बालों वाला सिंह है, साउथ अमेरिका में ब्राजील में भी एक अलग प्रकार का विशाल सिंह होता है और कॉन्गो के आसपास का जो जंगल है अफ्रीका का, वहाँ पर बहुत बड़ा सिंह है, वो एक अलग प्रजाति है उसकी। और भी विभिन्न स्थानों पर, कभी कभी एमपी में भी विदिशा के आसपास के किसी जंगल में सिंह देखा गया है। कभी कभी तो भ्रमण करते हुए वो इधर उधर चले जाते हैं किसी जंगल में। लेकिन गिरनार के जो 5 सिंह हैं, जिसमें एक का नाम है केसरी, दूसरा शार्दूल, तीसरा सावज, चौथा पंकज और 5वां बटुक। बटुक नाम के सिंह ने एक बार एक क्षुल्लक जी पर हमला कर दिया था गिरनार जी में, और क्षुल्लक जी ने अपने दुपट्टे से मुख को ढांक लिया कि अगर प्राण बच जाते हैं तो कम से कम चेहरा न विकृत हो और आगे की दीक्षा मैं ले सकूं। तो फिर वो हाथ में ऐसे नाखून मार करके, इतना हिस्सा फाड़ करके वो चला गया था। फिर वहाँ से उनको फिर जान से नहीं कुछ क्षति पहुँचाई थी, और फिर उनने फिर वहीं पर सब कपड़े वपड़े छोड़ करके बोले कि नहीं, अब मैं कोई परिग्रह नहीं रखूँगा। और फिर लगभग एक महीने बाद फिर आर्यनंदी महाराज श्री से उनने संस्कार कराए थे, दीक्षा के जो 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं। फिर उनका नाम वहाँ पर आत्मनंदी रखा गया। अभी हो सकता है कि उनकी संलेखना धरण गांव में चल रही हो। तो ये ऐसी घटना हो गई थी। वो बटुक सिंह था, ऐसे कुत्ते जैसा दिख रहा था। बटुक यानी छोटा होता है, वो छोटी साइज का जो सिंह होता है वो बटुक कहलाता। फिर सावज, पंकज वगैरह, इनकी सब अलग अलग प्रकार की लक्षणावली है, माने पहचान इनकी अलग अलग है। लेकिन केसरी सिंह जो होता है उसके बाल ऐसे सामने ना आकर के ऐसे पीछे लहराते हैं, और गर्दन के ऊपर के पीछे के बाल जो होते हैं वो बिल्कुल केसर के फूल की पत्तियों जैसे होते हैं। केसर देखा ना आपने? देखा होगा फोटो में या फिर किसी एड में देखा हो कम से कम। और वैसे तो टेस्ट भी सब लोग जानते हैं, केसर तो मंदिर में बहुत इस्तेमाल होता है। तो केसर की जो पत्तियाँ रहती हैं बिल्कुल वैसे ही बाल उसके गर्दन के ऊपर रहते हैं। और केसरी सिंह को वनराज इसलिए माना गया, सब प्रकार के सिंह में केसरी को वनराज इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी ध्वनि, उसकी गर्जना का कोई मुकाबला नहीं। वो अगर खड़े होकर के गर्जना करता है तो आप उससे 10-20 फुट दूर खड़े हों तो आपके पैरों में उसकी आवाज़ गूंजती है, और फिर हवा में कितनी गूंजती होगी ये सोच लो आप, कल्पना कर लो, 4-5 मील तक के उसकी आवाज़ सुनाई देती केसरी सिंह की। और उसकी आवाज़ सुन करके समन्वभद्र स्वामी ने चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति में लिखा है, प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगंडा गजा यथा केसरिणो निनादी। जैसे प्रवादी लोग मदमत हाथियों के समान होते हैं जो वाद विवाद करना चाहते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की वाणी केसरी सिंह की दहाड़ के समान उनकी बोलती बंद कर देती है। यानी मतलब ये हुआ कि केसरी सिंह जब दहाड़ता है जंगल में, तब अगर कोई आसपास मदमत हाथी भी जंगल में तूफान मचाए हुए हो वो एकदम शांत हो जाता है, उसका मद शांत हो जाता है, वो फिर उपद्रव नहीं करता, हाथी चुपचाप चला जाता है वहाँ से, खिसक जाता है। क्योंकि केसरी सिंह के उसके पंजे में भी बहुत शक्ति होती है। अभी यहाँ से हमने जो पुस्तक निकली थी उसका हमने अध्ययन किया था, बहुत बचपन की बात है, सिंह नाम की किताब थी, तो उसमें गुजरात से ही प्रकाशित हुई थी और उसमें सब गुजरात के सिंहों का वर्णन था। उसमें फिर शार्दूल की शक्ति का वर्णन किया, केसरी में इतनी शक्ति होती है कि उसके पंजे के एक प्रहार से अगर वो बैल के मस्तक पर प्रहार कर दे तो उस मस्तक की हड्डी बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है, दो टुकड़े नहीं होते, उसके खंड खंड हो जाते हैं, बहुत शक्ति होती है उसके पंजे के प्रहार में। और शार्दूल सिंह के बारे में बताया था कि वो जब बहुत भूख लगती है उसको तो वहाँ गिरनार के जो आदिवासी लोगों का गांव है, अंदर जंगलों में जो लोग रहते हैं ना, वन्य प्रजातियाँ मनुष्यों की, तो वो 12-12 फुट ऊंची दीवार रखते हैं, क्योंकि 12 फुट ऊंची दीवार को सिंह नहीं लांग सकता। लेकिन सामान्य नियम है ये, विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि वो शार्दूल जो होता है वो जब उसको जंगल में शिकार नहीं मिलता तो यहाँ गाँव के जानवरों को पकड़ने के लिए वो उस दीवार को लांग करके आ जाता है